हम सब खुदावंद अपने खुदा के हुजूर झुकें और उसके ज़िंदगी बख्श कलाम को अपनी रहनुमाई, हौसला फजाई और तंदुरुस्ती के लिए आज की सुबह मांग लेंगे। क्योंकि खुदावंद का कलाम कहता है, खुदावंद का बंदा दाऊद कहता है कि मेरी रूह खुदावंद की प्यासी है। सो आए हम उसे पुकारें जिसने कहा कि राह, हक और ज़िंदगी मैं हूँ। हम सब दुआ करेंगे। खुदा बाप तेरा शुक्र करता हूँ आज की सुबह के लिए, सारी रात की हिफाजत और निगहबानी के लिए, खुदावंद तेरी दी गई तमाम नेमतों बरकतों के लिए, तेरी फिक्र के लिए जो खुदावंद खुदा तो हम सब के लिए रखता है। और खुदावंद तेरी फिक्र हर रोज खुदावंद खुदा हम सब की खुदावंद खुदा जरूरतों को पूरा करती है। कि तू अपने कलाम में कहता है कि तू अपने महबूब को नींद ही में दे देता है। तू अपने कलाम में कहता है कि हवा के परिंदों को देखो, ना वो बोते हैं, ना वो काटते हैं, ना जमा करते हैं, तो भी तुम्हारा आसमानी बाप उनको खिलाता है। तुम्हारी कदर तो उनसे कहीं ज्यादा है। और खुदा खुदा तूने हमें अपनी शबी पर बनाया। आज का कलाम हम सब की हौसला फजाई और खुदा खुदा हमारी आंखों को खोलने का वसीला बने कि हम तेरे दिल को और खुदा खुदा तेरी मोहब्बत और फिक्र को जो तू हम सब के लिए रखता है जाने। सो आज का कलाम हम सब के लिए राहे खुदा खुदा ना सिर्फ निजात का बल्कि हौसला फजाई और उस फहम को जानने का वसीला ठहरे कि हम रूह और सच्चाई से तुझसे मोहब्बत करने वाले बने। यीशु मसीह के नाम में ये दुआ मांगता हूँ, आमीन आमीन। हालेलुया, यीशु मसीह के लिए जरा जोरदार तालियां देंगे। जो बाइबल मुकद्दस लेकर आए हैं बहन भाई मेरे साथ निकालें, नए अहदनामा में से लूका तबीब की मार्फत लिखी गई खुदावंद यीशु मसीह की इंजील, उसका हम 19वां बाब उसकी 41वीं आयत से 44वीं आयत तक पढ़ेंगे। और यहां पर हम देखेंगे कि यीशु यरूशलम पर रोता है और उसके रोने के पीछे उसके दिल में क्या था कि वो अपने इस मोहब्बत का, फिक्र का इजहार इस तरह करता है। सो हम यीशु मसीह की जमीनी जिंदगी में से सीख रहे हैं, देखना, सीखना और अमल करना। और यीशु मसीह यहां पर क्या करता है, जब हम 41वीं आयत को पढ़ते हैं, लिखा है जब नजदीक आकर शहर को देखा तो उस पर रोया और कहा, काश के तू अपने इसी दिन में सलामती की बातें जानता, मगर अब वो तेरी आंखों से छुप गई है। क्योंकि वो दिन तुझ पर आएंगे कि तेरे दुश्मन तेरे गिर्द मोर्चा बांध कर तुझे घेर लेंगे और हर तरफ से तंग करेंगे और तुझको और तेरे बच्चों को जो तुझ में है जमीन पर दे पटकेंगे और तुझ पे और तुझ में किसी पत्थर पर पत्थर बाकी ना छोड़ा जाएगा, ना छोड़ेंगे, इसलिए कि तूने उस वक्त को ना पहचाना जब तुझ पर निगाह की गई। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। जब हम यहां पर देखते हैं यीशु मसीह यरूशलम में दाखिल होता है और दाखिल होते ही क्या लिखा है जी, उसने शहर पर क्या की है जी, नजर की है, शहर को देखा। जब हम खुदा के कलाम का मुताला करते हैं, जहां कहीं भी पुराने अहदनामा में नए अहदनामा में खुदा देखता है शहर की हालत को, किसी खानदान की हालत को, किसी मुल्क की हालत को, तो उसको जब देखता है तो खुदावंद खुदा का जो देखना है वो क्या है जी, तरस, रहम और हफाजत और फिक्र से भरा हुआ होता है कि मैं इस शहर, इस खानदान, इस कबीले पर, इस मुल्क पर क्या कर रहा हूं जी, निगाह कर रहा हूं। और जब वो निगाह करता है तो उसमें वो जांचता है, परख करता है कि उन लोगों की हालत क्या है। जैसे आप माँ बाप जो हैं जब अपने बच्चों पर गौर करते हैं, उनके हालात पर, उनकी जिंदगी पर, उनकी रोजमर्रा की جو ہے جی ضرورتیں ہیں ان پر اور فیصلہ کرتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہوگا. اگر ہمارا بیٹا بیٹی کیا ہو جی غلط راستے پر جا رہا ہو تو ہم اسے کیا کریں گے جی, نصیحت کریں گے, بیٹا بیٹی اس راستے پر مت جاؤ. اور اگر وہ بیٹا اور بیٹی درست راستے پر چل رہے ہیں تو ہمارا دل کیا ہوگا جی, خوش ہوگا, خداوند خدا کے نام کو ہم جلال دیں گے کہ خدا تیرا شکر ہو کہ میرا بیٹا میری بیٹی میرا رشتہ دار تیری راہوں پر چل رہا ہے, تیرے نام کو جلال ملے. سو یہاں پر ہم جب دیکھتے ہیں, جب نزدیک آ کر شہر کو دیکھا, دوسرے لفظوں میں اس نے شہر پر نگاہ کی. جب ہم یروشلم میں جاتے ہیں تو یروشلم کے باہر کیا ہے جی, ارد گرد پہاڑیاں ہیں, اور جب ہم دیکھتے ہیں یہ اونچے نیچے راستے ہیں, اور میں اس جگہ پر تھا جس جگہ پر یہ حوالہ لکھا گیا ہے. یسوع مسیح نے جب یہ حوالہ لوکا طبیب نے لکھا ہے تو ہم اس جگہ پر کھڑے ہوئے تھے جہاں پر یسوع مسیح نے کھڑے ہو کر یہ بات کہی تھی کہ اس نے یروشلم میں داخل ہوتے ہوئے شہر پر نگاہ کی. کیونکہ یہ اونچی جگہ پر یسوع مسیح کھڑا ہے اور اس جگہ سے کیا ہے جی, پورا شہر جو یروشلم ہے اسے دیکھا جا سکتا ہے, اس کی تمام روشنیوں کو, اس کی تمام حد بندی کو, اس کے پورے شہر کو دیکھا جا سکتا ہے. اور یسوع مسیح نے جب پورے شہر پر نگاہ کی تو یسوع مسیح نے اس پر نگاہ کرتے ہوئے کیا کیا جی, اس بات کا نتیجہ نکالا کہ ان بچوں پر میرے لوگوں پر جو میرے نام سے کہلاتے ہیں جب نگاہ کی تو ایسی ہی نگاہ ہے کہ جب اس نے پرانے عہد نامہ میں نینوا کے شہر کے لوگوں پر نظر کی, دیکھا, اور انہوں نے کہا, خداوند نے کہا کہ ان کی بدی بہت بڑھ چکی ہے, کیا کیا جائے جی, ایک نبی کو بھیجا جائے تاکہ وہ نبی جا کر نینوا کے شہر میں منادی کرے کہ توبہ کر لو اس سے پہلے کہ خدا کا قہر تم پر آئے. اور نینوا شہر میں نبی کو بھیجا گیا کہ جا کر کیا کرے جی, منادی کرے کہ خدا کے ساتھ صلح کر لو, خدا کا دل تمہاری طرف ہے, اگر توبہ نہ کرو گے تو خدا کا چہرہ تمہارے مخالف ہوگا. سو یہاں پر جب ہم دیکھتے ہیں یسوع مسیح نے یروشلم پر نگاہ کی, دیکھا کہ یہ وہ میرے بچے ہیں, یہ وہ میرے لوگ ہیں جو میرے نام سے کہلاتے ہیں, اور فکر اور محبت اور ترس اور رحم کے ساتھ یسوع مسیح نے کہا, کاش کہ تو اپنے اسی دن میں سلامتی کی باتیں جانتا. جیسے ہم اپنے بچوں کو کہتے ہیں جب وہ اس جگہ پر پہنچ جاتے ہیں جہاں پر کیا ہے جی خطرہ ہے, جہاں پر کیا ہے جی اب حالات ان کے خراب ہیں, جہاں پر انہوں نے غلط فیصلے کر کے اپنے آپ کو پہنچا دیا ہے, اور کیا کرتے ہیں کہ کاش میرے بیٹے میری بیٹی تم نے میری بات کو سنا ہوتا. سو یہاں پر یروشلم پر یسوع مسیح نگاہ کر کے کہتا ہے, کاش کہ تو اپنے اسی دن میں سلامتی کی باتیں جانتا, مگر اب وہ تیری آنکھوں سے چھپ گئی ہیں. جیسے دوسرے لفظوں میں, میں نے کتنی بار چاہا یروشلم کہ تیرا بھلا ہو, تیری حفاظت ہو. اور جب ہم اس آیت کو پڑھتے ہیں تو ہم شروعات کر سکتے ہیں اس دن سے جب حران کے بیابان میں سے خدا نے ایک خاندان میں سے جو تارا کا قبیلہ تھا اس میں سے ایک بندہ نام ابرام کو چنا اور اس سے کہا. اس سے کہا کہ جو ملک میں تجھے دکھاؤں گا اس ملک پہ جا, اور اس ملک میں کیا ہے جی, میں تجھے ایک قوم بناؤں گا اور وہ قوم بڑی نسل والی ہوگی, تیرے وسیلہ سے دنیا کے سب قبیلے کیا پائیں گے جی, برکت پائیں گے. وہاں سے شروع ہوتی ہے خدا کی فکر, خدا کا دیکھنا, خدا کا ترس, خدا کی محبت بنی اسرائیل قوم کے لیے, کہ ابرام کو اس نے جو قوم کا باپ تھا نام دیا ابراہام, یعنی کہ قوموں کا باپ. और कहा कि मैं तेरे सुलभ में से एक बेटा पैदा करूंगा और बेटा वो क्या होगा जी, तेरा प्यारा होगा, तेरा इकलौता एक ही बेटा होगा और तू उसे जो जगह मैं दिखाऊंगा जाकर कुर्बान करना। और जब इब्राहिम ने ताबेदारी करनी शुरू की कि अपने बेटे को कुर्बान करे तो खुदा ने देखा, निगाह की कि इब्राहिम वफादार है, तो उसने कहा इब्राहिम 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 अपने हाथ को अपनी छुरी को इस लड़के पर ना चलाना। और खुदा ने वहां पर बर्रा मुहैया कर दिया। वो इब्राहिम का बेटा जो इजहाक था बच गया, लेकिन यहां पर खुदा का बेटा क्या है जी, यरूशलम में दाखिल होता है कि उसी जगह पर अब वो क्या है जी, खुदा नहीं कहेगा यहूदियों से रूमियों से कि अपने हाथ को रोक लो, इसके हाथों में कीलों को ना छेदना, इसके पसली में नेजा ना मारना, इसके सर पर कांटों का ताज ना रखना। अब ये आसमानी बाप क्या करेगा कि इब्राहिम को तो उसने कहा कि अपना बेटा कुर्बान कर दे और उसे बचा लिया, और यहां पर वो अपना बेटा कुर्बान करने के लिए यरूशलम में भेजता है, क्योंकि आगे चलकर हम देखेंगे कि यीशु मसीह को वो कुर्बान करेंगे, यीशु मसीह को वो मारेंगे, यीशु मसीह को कत्ल करेंगे। और यहां पर यीशु मसीह कहता है कि काश के तू इसी दिन में अपनी सलामती की बातों को जाने। दूसरे लफ्जों में खुदा कह रहा है कि उन तमाम मेहरबानियों को जो मैंने इब्राहिम से लेकर अब तक तुम्हारे साथ की हैं, तुम पर की हैं, उन पर निगाह करो। हमें भी बहुत दफा खुदा ऐसा ही कहता है, हमें भी बहुत दफा खुदा ऐसा ही कहता है कि काश के तुम अपने इस दिन में, जब तक तुम सलामत हो, जब तक तुम्हारे दिल की सांसें चलती हैं, जब तक तुम्हारी रगों में खून दौड़ रहा है, जब तक तुम चल फिर सकते हो, मेरी सलामती को समझो, मेरे इत्मीनान को समझो। सो खुदावन यीशु मसीह यहां पर उनकी हालत को देखकर कहता है कि काश के तुम उन मेहरबानियों को जानते समझते जो मैंने तुम पर की है, लेकिन अब वो तुम्हारी आंखों से छुप गई हैं। सो खुदा का रहम, खुदा का तरस क्या है जी, पुश दर पुश रहता है, लेकिन जब इंसान उसकी फरमा बरदारी नहीं करता, ना फरमानी, और खुदा के रहम का प्याला जब भर जाता है तो फिर क्या होता है जी, सदूम और अमूरा वाला हाल। खुदा ने इब्राहिम से कहा कि मैंने अपना लश्कर भेजना है, अपनी अदालत सदूम और अमूरा पर लानी है, और इब्राहिम ने कहा कि काश के वहां पर 10-40 मिल जाएं, 30 मिल जाएं, 20 मिल जाएं, और यहां 10 मिल जाएं रास्तबाज, तो क्या तू उन पर रहम नहीं करेगा। खुदा ने कहा मैं करूंगा, लेकिन वहां पर 10 क्या, सिर्फ 5 रास्तबाज लोग मिले। और खुदा ने आखिर को क्या कहा कि तुम्हारी सलामती के दिन तुमसे छुप गए। और सदूम और उमूरा में खुदावन ने आसमान से क्या भेजी थी जी, आग और गंधक की क्या हुई थी जी, बारिश हुई थी, और वो दोनों शहर जलकर भस्म हो गए, और जितने लोग वहां पर बदि करते थे वो सब मर गए, क्योंकि उन्होंने खुदा के तर्स को ना समझा। यहां पर यरूशलम में जब खुदावंद आता है तो खुदावंद उनको कहता है, रहम पर रहम तुम पर किया, मेहरबानियां तुम पर की, तुम्हारे लिए मैंने सब कुछ किया, कौमों से लड़ा, तुमको मैंने सरफराज किया, तुमको मैंने बरकतें दी, तुम्हारे खतों को मैंने भरा, तुम्हारी नस्ल को सरफराज किया, सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए किया, लेकिन तुमने उसको ना जाना। और आगे क्या लिखा है, क्योंकि वो दिन तुझ पर आएंगे कि तेरे दुश्मन तेरे गिर्द मोर्चा बांध कर तुझे घेर लेंगे और हर तरह से तुझे तंग करेंगे। ये नबूवत यीशु मसीह ने यरूशलम पर की जब वो यरूशलम को देखता है, और क्या हुआ, ये नबूवत पूरी हुई 70 ईस्वी में टाइरस रोमन जो था वो आया, और उसने क्या किया, इसराइल का महाज किया, यानी कि उसे घेर लिया, अपनी फौजों के साथ आया, उसके इर्द गिर्द मोर्चे बांध लिए, और इस रूमी शहंशाह ने क्या किया जी, यरूशलम का पत्थर पर पत्थर बाकी ना रहा, उसमें जंग लगी। उन्होंने तमाम वो बातें जो यीशु ने यहां कही वो पूरी हुई। वो तुझे घेर देंगे और तुझको और तेरे बच्चों को जो तुझ में है जमीन पर दे पटकेंगे, और तुझ में किसी पत्थर पर पत्थर बाकी ना छोड़ा जाएगा, इसलिए कि तूने उस वक्त को ना पहचाना जब तुझ पर निगाह की। इसराइल ने, यरूशलम ने खुदा के तरस को रद्द कर दिया जो कि बेबहा था। हमें भी अपनी जिंदगी में खुदावंद खुदा के तरस और रहम को याद रखना चाहिए। ऐसा ना हो कि बहुत से लोगों ने, जैसे आज मसीही लोगों ने अपने दिलों को सख्त किया हुआ है कि वो मसीही तो कहलाते हैं लेकिन मसीह की मोहब्बत नजर नहीं आती, वो मसीही तो कहलाते हैं लेकिन रहम करना पसंद नहीं करते, वो मसीही तो कहलाते हैं लेकिन माफ करना नहीं जानते, वो मसीही तो कहलाते हैं लेकिन क्या है जी, मसीह की ताबेदारी और उसकी आवाज को नहीं सुनते। यीशु यरूशलम पर रोता है कि मैंने कितनी बार चाहा, मैंने ये सब कुछ तुम्हारे लिए किया और तुमने उस पर कान नहीं धरे। जैसे हम अपने बच्चों को कहते हैं, मैं मिसाल के तौर पर हमेरा को कहता हूं, हमेरा इस रास्ते पर नहीं जाना, ये रास्ता गुनाह का है, ये बदी का है, ये झूठ का है, यूसुफ इस रास्ते पर नहीं जाना, समसून इस रास्ते को मत चुनो, अगर तुम इस रास्ते को चुनोगे तो इसके आखिर में जो मोड़ आएगा वो तुम्हारी जान को बर्बाद कर सकता है, तुम्हें गुनाहों में ले जा सकता है, तुम्हें मौत दे सकता है, तुम ऐसी बीमारी का, ऐसे गुनाह का शिकार हो सकते हो जिससे तुम्हें क्या हो सकता है जी, बहुत नुकसान हो सकता है। और इनको मैं कहता हूं हर रोज, हर हफ्ता, हर महीना, साल और साल गुजर जाते हैं और ये कहते हैं कोई बात नहीं, ये कहते रहे हम अपनी मर्जी करेंगे, हम अपनी मर्जी से जिंदगी बसर करेंगे, हम झूठ भी बोलेंगे, हम फरेब भी करेंगे, हम अपनी मनमानी करेंगे, किसी को कौन सा पता चल रहा है, और आखिर को उनकी तमाम नाफरमानियों का निचोड़ क्या होगा, अगर चोरी करते पकड़े गए तो थाने में चले जाएंगे, अगर झूठ बोलते पकड़े गए तो किसी का तबार उन पर नहीं रहेगा, अगर वो गुनाह में गिर जाएंगे तो क्या होगा जी, शैतान उनको बर्बाद कर देगा। वैसे ही यहां पर हुआ, इसराइल ने अपने कानों को बंद कर लिया, यरूशलम के लोगों ने अपने कानों को बंद कर लिया कि खुदा उनके दरमियान आकर उनको कहता है कि मेरा रोना तुझ पर क्यों है, क्योंकि मैं तुझसे मोहब्बत करता हूं। याद है लाजर जो चार दिन का मुर्दा था, वो मर गया, यीशु मसीह जब उसकी कब्र पर गया, यीशु मसीह क्यों रोया? वो इसलिए नहीं रोया कि लाजर मर गया है, यीशु मसीह इसलिए नहीं रोया कि वो अपने पीछे दो बहनों को छोड़ गया है, यीशु मसीह लाजर की कब्र पर इसलिए नहीं रोया कि लाजर क्यों चार दिन तक मुर्दों में रहा, यीशु मसीह इसलिए रोया कि वो उनके दरमियान खड़ा था जिसे जिंदगी और मौत और हर चीज पर इख्तियार है। उन यहूदियों ने यीशु का इकरार और यकीन ना किया और उनके दिल सख्त थे, और यीशु मसीह ने रोकर कहा कि अब आप अपने नाम को जलाल दे, आज इन पर जाहिर कर दे कि ये जो लाजर की कब्र पर रोने वाला है वो क्या है जी, एक दिन यरूशलम के लोगों पर भी रोएगा कि उन्होंने अपने आप को मुर्दा कर लिया है। लाजर जो चार दिन का मुर्दा था, खुदा के लिए आसान था कि कहे ए लाजर मुर्दों में से निकला, लेकिन यरूशलम के लोगों के दिल इतने सख्त और तंग और मुर्दा हो चुके थे कि उन्होंने अपने बनाने वाले, उनको कौम का नाम देने वाले मसीह को उन्होंने ना पहचाना। इसलिए यीशु मसीह कहता है कि तुमने अपनी सलामती को ना पहचाना, अपनी तसल्ली को ना पहचाना, उस सलामती के शहजादे को ना पहचाना जो दो दिन पहले क्या है जी, एक दिन पहले क्या आया है जी, यरूशलम में आया जब उन्होंने नारे लगाए थे। कौन सा नारा लगाया था? इब्ने दाऊद को होशियाना, इब्ने दाऊद को होशियाना। और सब नारे लगा रहे हैं, फरकी फरीसी कह रहे हैं इनको चुप करा दे। यीशु कहता कि अगर मेरे शिगिर्द चुप हो गए तो पहाड़ चला उठेंगे। तो यहां पर यीशु मसीह का रोना क्या है जी, उनकी रूहानी मुर्दगी पर है। बहुत दफा यीशु मसीह हम पर रोता है जब हम नाफरमानी करते हैं। जैसे माँ और बाप अपने बच्चों के गलत फैसलों पर कहते हैं ओए ऐसी तो इन्होंने तालीम ही नहीं देती सी, हमने तो इनके लिए सब कुछ अच्छा चाहा लेकिन इन्होंने बुरा ही किया। और बहुत दफा बच्चे माँ बाप के करदार पर रोते हैं कि हमारे माँ बाप को हो क्या गया है कि वो गलत रास्ते पर चल गए। इसलिए आज की सुबह आपके लिए पैगाम क्या है, यीशु मसीह आपकी फिक्र करता है। यीशु मसीह का रोना आपके लिए और मेरे लिए क्या है, क्योंकि वो चाहता है कि हम उसके परों के नीचे ऐसे रहें जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने परों के तले छुपा लेती है। और जबूर 91 में लिखा हुआ है, जबूर 91 को जब पढ़ते हैं तो वहां पर भी खुदा का कलाम हमें यही सिखाता है कि खुदावंद खुदा क्या करता है, हमारी फिक्र करता है और हमको कहता है जो हक ताला के पर्दा में रहेगा वो कादर मुतलक के साया में क्या करेगा, सुकूनत करेगा। मैं खुदावंद के बारे में कहूंगा वो ही मेरी पनाह है और मेरा घर है, और क्या लिखा है वो मेरा खुदा है जिस पर मेरा तवक्कल है। सो अपने आप को खुदा की फिक्र में दें, खुदा के परों के नीचे रखें। और लिखा है खुदा दे पर दे हेटा जो कोई इंसान रहता है। आए हम खुदा के सुर झुकें और दुआ करें। खुदावंद खुदा जैसे तू इसराइल के लोगों की फिक्र रखता है वैसे ही तू हम सब की फिक्र रखता है। तूने अपने आप को इस जमीन पर इसीलिए भेजा कि अपनी मोहब्बत को जाहिर करे, सबको छू, बड़ी बरकत दे। आज का कलाम एक जिंदगी के लिए हौसला और रूहानी तसल्ली का वसीला ठहरे। जो तस्वीर बनाई गई है खुदावंद, ये तस्वीर कोई भी ना भूले कि अगर वो नैनुआ पर रोता है, अगर वो सदूम और अमूरा पर निगाह करता है, अगर वो यरूशलम पर निगाह करता है और उनको मुर्दा तौर पर पाता है तो वो उन पर रोता है, वैसे ही वो हमसे भी कहता है देख मैं दरवाजे पर खड़ा खटखटाता हूं, अगर कोई मेरी आवाज को सुनकर जवाब देगा तो मैं उसके साथ रफाकत रखूंगा। खुदावंद आज का पैगाम सबके लिए रहनुमाई का वसीला ठहरे और हम तेरे आंसुओं पर निगाह करें, हम तेरी आवाज पर अपने कान लगाएं, हम तेरे दिल को समझने वाले बने और तेरे कलाम को कबूल करके हमेशा के लिए खुदावंद तेरी ताबेदारी करने वाले बने। इस कलाम के वसीला से सब कुछ बड़ी बरकत दे। यीशु मसीह नासरी के नाम में ये दुआ मांगता हूँ।